नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ वार्ता करेंगे। द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की होगी समीक्षा। नेपाल में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए भारतीय विमानन कंपनियां आज से काठमांडू के लिए सामान्य सेवाएं दोबारा शुरू करेंगी। इसरो ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान तकनीक के हस्तांतरण और इसे वाणिज्यिक स्तर पर ले जाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत ने दोहा में इसराइल के हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की। बातचीत और कूटनीति के माध्यम से मुद्दों को सुलझाने का आह्वान किया। और एशिया कप क्रिकेट में भारत ने दुबई में मेजबान यूएई को 9 विकेट से हराया। 58 रन का लक्ष्य केवल 4 ओवर और 3 गेंद में किया हासिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आध्यात्मिक नगरी वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम की मेजबानी करेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री 9 से 16 सितंबर तक भारत यात्रा पर हैं। वे कल शाम वाराणसी पहुंचे, जहां उनके पारंपरिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री रामगुलाम का ये दौरा मार्च में प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस यात्रा के बाद हो रहा है, जब दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी, खासकर डेवलपमेंट पार्टनरशिप और कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान दिया जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और नए क्षेत्रों जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्लू इकोनॉमी में साझेदारी बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा होगी। हिंद महासागर क्षेत्र में एक करीबी समुद्री पड़ोसी के रूप में मॉरिशस भारत की महासागर दृष्टि और नेबरहुड नीति के लिए अहम है। दोनों देशों के बीच गहरा होता तालमेल दोनों देशों की खुशहाली के साथ साथ ग्लोबल साउथ की सामूहिक आकांक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। आलोक राय, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
प्रधानमंत्री मोदी आज शाम उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का विमान से सर्वेक्षण करेंगे। इसके बाद श्री मोदी अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जौलीग्रांट हवाई अड्डे का दौरा किया और प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का निरीक्षण किया।
प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल शाम जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचकर तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि इस मॉनसून सीजन में उत्तराखंड के कई जिलों, विशेषकर उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर और टिहरी में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से स्थानीय जनजीवन प्रभावित हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री के दौरे से राहत और पुनर्निर्माण कार्यों को नई दिशा और गति मिलेगी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की और दोहा में हाल में हुए इजरायली हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत कतर की संप्रभुता पर आघात की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि भारत संवाद और कूटनीति से मुद्दों के समाधान और टकराव से बचने का पक्षधर है। शेख तमीम ने कतर और वहां की जनता के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया। एयर इंडिया और इंडिगो ने घोषणा की है कि वो नेपाल में हाल ही में हुए घटनाक्रम के कारण फंसे यात्रियों की मदद के लिए दिल्ली से काठमांडू के बीच विशेष उड़ानें चला रही हैं। एयर इंडिया ने एक बयान में कहा है कि नियमित उड़ानें शुरू हो गई हैं और आज भी चलेंगी। एयरलाइन ने यात्रियों से अनुरोध किया कि वे उड़ानों की स्थिति उसकी वेबसाइट पर जाकर देखें। इस बीच केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने कहा है कि विमानन कंपनियों को उचित किराए लेने की सलाह दी गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सरकार इस समय यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच नेपाल के स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्रालय ने पुष्टि की है कि 8 सितंबर को युवा प्रदर्शनकारियों के आंदोलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। मंत्रालय के अनुसार देशव्यापी आंदोलन के दौरान 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में ये प्रदर्शन 8 सितंबर को काठमांडू में शुरू हुए थे। इधर बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने नेपाल की वर्तमान स्थिति पर अधिकारियों के साथ पटना सचिवालय में एक उच्चस्तरीय बैठक की। मुख्य सचिव ने भारत नेपाल सीमा से लगे सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी किए जाने के निर्देश दिए। इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि संघर्षग्रस्त नेपाल में फंसे पर्यटकों को वापस लाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV तकनीक के हस्तांतरण के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसरो द्वारा विकसित SSLV एक त्वरित प्रक्षेपण यान के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसका औद्योगिक उत्पादन के लिए विस्तार किया जा सकता है। इसका उद्देश्य छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाना है। इसरो ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता देश के अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो SSLV के वाणिज्यिक विस्तार का मार्ग प्रशस्त करता है। इसकी सफल तैनाती से भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को मजबूती मिलेगी, साथ ही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छोटे उपग्रहों की प्रक्षेपण सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकेगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार संधि को अंतिम रूप देने के लिए सक्रियता से काम कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से व्यापक वार्ता पर सकारात्मक संकेत साझा किए जाने और दोनों देशों के आपसी संबंधों में बढ़ती सहजता के बाद श्री गोयल ने ये टिप्पणी की।
We should allow the negotiations to happen. We continue to have very good relations with the United States, and I'm sure that we'll be able to resolve some of these issues and come to an equitable, fair and balanced agreement.
कल नई दिल्ली में लीड्स शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि यूरोपीय संघ और न्यूजीलैंड के साथ भी व्यापार वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि ओमान के साथ व्यापार समझौता जल्द ही संपन्न होगा। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली तक वस्तु और सेवा कर GST में नए सुधारों की घोषणा की थी। GST परिषद ने 3 सितंबर को आम लोगों को राहत प्रदान करने के लिए दरों को युक्तिसंगत बनाने की मंजूरी दी। आज हम बात करेंगे कि ये सुधार घरेलू इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को और अधिक किफायती बनाकर मध्यम वर्ग की कैसे मदद करते हैं।
नए GST सुधारों के अंतर्गत सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। अब घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे एयर कंडीशनर, डिशवॉशर और LCD LED TV पर GST दर 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। टैक्स में इस कटौती से ये सामान सस्ते हो जाएंगे, जिससे इनकी मांग बढ़ेगी और घरेलू उत्पादकों को अपना व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस बीच मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल के निदेशक देशराज भटाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि ये GST सुधार घरेलू मांग को बढ़ाएंगे और आम लोगों की खपत में इजाफा करेंगे।
इन द इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर द रिडक्शन ऑफ GST ऑन एयर कंडीशनर्स एंड टेलीविजन्स फ्रॉम 28% टू 18% इज स्पेशली वेलकम। दिस हैज बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग आस्क ऑफ द इंडस्ट्री एंड वी आर डिलाइटेड टू सी इट फुलफिल। बाय मेकिंग दीज अप्लायंसेस मोर अफोर्डेबल द डिसीजन विल स्टिमुलेट डोमेस्टिक डिमांड, एक्सपेंड हाउस होल्ड कंजम्पशन एंड क्रिएट द स्केल रिक्वायर्ड फॉर इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री टू कम्पीट ग्लोबली।
GST सुधारों से उपभोक्ताओं के लिए चीजें और सस्ती होंगी और भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पूर्व सैनिकों को आज कोलकाता के मैदान इलाके में गांधी प्रतिमा के सामने धरना देने की अनुमति दे दी है। हाल ही में कोलकाता में पूर्वी कमान के सैन्य कर्मियों द्वारा मैदान इलाके से तृणमूल कांग्रेस के एक अस्थायी मंच को हटाए जाने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सेना पर कथित रूप से कुछ टिप्पणियां की थी। न्यायालय ने धरना की अनुमति देते हुए कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। प्रतिबंधों में ये भी शर्त है कि कोई भी भाजपा नेता इसमें शामिल नहीं हो सकता और कोलकाता पुलिस को प्रदर्शन में भाग लेने वालों के नाम उपलब्ध कराने होंगे। ओरेकल के सह संस्थापक और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी लैरी एलिसन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इससे पहले एलन मस्क को यह दर्जा हासिल था। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एलिसन की संपत्ति 393 अरब डॉलर हो गई है, जो मस्क की 385 अरब डॉलर की संपत्ति से अधिक है। अब बात खेलों की। एशिया कप T20 क्रिकेट के ग्रुप ए मैच में कल भारत ने UAE को 9 विकेट से हरा दिया। ये मैच T20 अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में चौथा सबसे कम समय में पूरा होने वाला मुकाबला रहा। पूरे मैच में सिर्फ 106 गेंदें डाली गईं। 58 रन के मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने केवल 27 गेंदों में एक विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। अभिषेक शर्मा ने 16 गेंदों पर 30 रन की पारी खेली, जबकि शुभमन गिल 20 रन बनाकर नाबाद रहे। कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज ग्रुप बी में बांग्लादेश और हांगकांग आमने सामने होंगे। अबुधाबी में यह मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय हैवीवेट मुक्केबाज नूपुर श्योराण महिलाओं की 80 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। ब्रिटेन के लिवरपूल में खेले जा रहे इस मुकाबले में नूपुर ने उज्बेकिस्तान की ओल्टिनोए सोतियोम्बोवा को 4-1 से हराकर कम से कम कांस्य पदक पक्का कर लिया है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, तटीय आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की बारिश की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
धन्यवाद विशाल। नेपाल का घटनाक्रम आज भी सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, सड़कों पर सेना उतरने के बाद नेपाल में शांति, अंतरिम सरकार बनाने में जुटे आंदोलनकारी। हरिभूमि ने लिखा है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की संभालेंगी नेपाल की कमान। भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते फिर पटरी पर आने को भी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। जनसत्ता की सुर्खी है, फिर से दोस्ती को उत्सुक मोदी ट्रंप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को बताया स्वाभाविक साझेदार, वहीं ट्रंप ने कहा भारत से बातचीत जारी। दैनिक जागरण का कहना है, भारत अमेरिका में कारोबारी समझौता जल्द, 50% टैरिफ कटौती पर फैसले की संभावना। फेक न्यूज पर नियम होंगे कड़े, राजस्थान पत्रिका के अनुसार संसद की संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दुष्प्रचार और AI से बनी फर्जी खबरों पर प्रतिबंध, जुर्माना और सजा की सिफारिश की। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर दी है, अब पूरे देश में शुरू होगी वोटर लिस्ट रिविजन की कवायद। निर्वाचन आयोग ने SIR पर राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की, तारीख का ऐलान होगा जल्द। बिहार में 7,616 करोड़ रूपये की दो बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को केंद्र सरकार की मंजूरी, दैनिक भास्कर में है। इनमें मुकामा से मुंगेर के बीच 4-लेन हाईवे और भागलपुर दुमका रामपुर हार्ट रेलवे लाइन का दोहरीकरण शामिल।
धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ वार्ता करेंगे। द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की होगी समीक्षा। नेपाल में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए भारतीय विमानन कंपनियां आज से काठमांडू के लिए सामान्य सेवाएं दोबारा शुरू करेंगी। इसरो ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान तकनीक के हस्तांतरण और इसे वाणिज्यिक स्तर पर ले जाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत ने दोहा में इसराइल के हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की, बातचीत और कूटनीति के माध्यम से मुद्दों को सुलझाने का आह्वान किया। और एशिया कप क्रिकेट में भारत ने दुबई में मेजबान UAE को 9 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।